स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 21 अक्टूबर और दिन बुधवार। नवाज शरीफ पहुंचे अमरीका, नवाज ओबामा मुलाकात से क्या है उम्मीदें?
I think he will see Nawaz Sharif as not the problem, but perhaps also not the solution.
बिहार में तीसरे चरण से पहले प्रचार के मुद्दे तो बदले, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी।
गलत ढंग से बिहार सरकार पर आरोप मढ़कर ये सिर्फ और सिर्फ जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं।
खेल समाचार के अलावा और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी चार दिन की यात्रा पर अमरीका पहुंच गए हैं। वे कल अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा से मिलेंगे। नवाज शरीफ ऐसे वक्त अमरीका पहुंचे हैं जब राष्ट्रपति ओबामा ने अफगानिस्तान के गंभीर हालात को देखते हुए वहां अमरीकी सुरक्षा बलों की तैनाती को जारी रखने का फैसला किया है। बहुत मुमकिन है कि अफगानिस्तान में तालिबान की भूमिका और तालिबान को बातचीत के लिए राजी करना इस मुलाकात के दौरान चर्चा का अहम मुद्दा बने। रूस और अमेरिका के अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों ने एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे सीरिया के हवाई क्षेत्र में उनकी वायुसेना में भिड़ंत को टाला जा सकता है। रूस ने 30 सितंबर को सीरिया पर हवाई हमले शुरू किए थे। पिछले हफ्ते अमेरिका ने कहा कि दोनों देशों के विमान एक ही हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गए और एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थे। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों के बीच संपर्क स्थापित करने और जमीन पर हॉटलाइन शुरू करने की बात की गई है। ब्रिटेन में अपने दौरे के पहले दिन के आखिर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बकिंगम पैलेस में शाही भोज में शामिल हुए। अपने भाषण में क्वीन एलिजाबेथ ने राष्ट्रपति जिनपिंग की इस यात्रा को दोनों देशों के रिश्ते और वैश्विक साझेदारी में एक अहम मोड़ माना। राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि दोनों देश विकास के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं और उन्होंने आपसी सहयोग पर जोर दिया। हम अब पिछली सदी के युद्ध और संघर्ष की परछाई से बाहर आ गए हैं। अब हम शांति, विकास, सहयोग और आपसी फायदे के नए युग में दाखिल हो रहे हैं। सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं और सभी के सरोकार भी एक जैसे हैं। चीन की एक कहावत है कि जब अच्छा वक्त आता है तो हम उसे खो नहीं सकते, जब अवसर आता है तो हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए। उसी तरह अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अच्छे मौके को हाथ से नहीं जाने देता। हमें इस मौके को नहीं जाने देना चाहिए और अपने रिश्ते पहले से भी बेहतर करने चाहिए। ये थे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कनाडा के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की है कि उनकी लिबरल पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद अब कनाडा वैश्विक मंच पर लौट आया है। ओटावा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में कनाडा के मित्र देश चिंतित थे कि पिछली सरकार के अधीन कनाडा अपनी रचनात्मक और संवेदनशील स्वर को खो रहा है, लेकिन अब उनका ये डर खत्म हो जाएगा। अपनी जीत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपने लड़ाकू जेट्स को हटाने के इरादे की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक पूर्व अध्यक्ष जॉन एश को अमेरिका की ग्रैंड जूरी ने रिश्वत लेने का दोषी पाया है। जॉन एश एंटवा और बारबुडा में संयुक्त राष्ट्र के राजदूत थे। मकाऊ के एक अरबपति व्यवसायी और तीन अन्यों को भी रिश्वत लेने का दोषी पाया गया। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अक्टूबर की 21 तारीख और दिन बुधवार। वक्त हो चला इस वक्त 6:33 और 46 सेकंड। कार्यक्रम की शुरुआत पाकिस्तान अमेरिका संबंधों से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर हैं और आज से उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो रहा है। आज वो कांग्रेस के विदेश मामलों की समिति के सवालों के जवाब देंगे और अमरीकी निवेशकों से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन सबकी नज़र होगी बृहस्पतिवार यानी कल राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ होने वाली उनकी मुलाकात पर। नवाज शरीफ के इस अमरीकी दौरे से क्या है उम्मीदें, बता रहे हैं वाशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय।
नवाज शरीफ एक ऐसे माहौल में वाशिंगटन पहुंचे हैं जब राष्ट्रपति ओबामा को एक बेहद मुश्किल फैसले के तहत अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की वापसी पर रोक लगाने का ऐलान करना पड़ा है, जहां ओबामा ने एक तरफ ये कहा है कि अफगानिस्तान की तेजी से बिगड़ती स्थिति की वजह से उन्हें यह फैसला करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि तालिबान के सुरक्षित पनाहगाहों को खत्म करना होगा और नवाज शरीफ से अपनी मुलाकात के दौरान वो उनसे तालिबान को बातचीत के लिए राजी करवाने के लिए दबाव डालने को भी कहेंगे। दक्षिण एशिया के मामलों के जानकारों का कहना है कि बृहस्पतिवार को दोनों नेता जब व्हाइट हाउस में मिलेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान ही होगा। ओबामा प्रशासन की अफगान पाकिस्तान नीति की नींव रखने वाले ब्रूस राइडल का कहना है कि अगर पाकिस्तानी फौज अफगान तालिबान की मदद नहीं कर रही होती तो अफगानिस्तान युद्ध की कहानी कुछ और ही होती, और उनके अनुसार इस मुलाकात से किसी बदलाव की उम्मीद भी नहीं की जा सकती।
Not the problem, but perhaps also not the solution.
ब्रूस राइडल कह रहे थे कि इस मुलाकात में ओबामा नवाज शरीफ को समस्या के तौर पर नहीं देखेंगे, लेकिन उन्हें हल की तरह भी नहीं देखा जाएगा। अपनी बात को समझाते हुए उनका कहना था कि समस्या इसलिए नहीं क्योंकि तालिबान का साथ नवाज शरीफ नहीं पाकिस्तानी फौज दे रही है, हल इसलिए नहीं क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि फौज वो करेगी जो नवाज शरीफ उनसे करवाना चाहेंगे। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए बरसों काम कर चुके और 4 अमरीकी राष्ट्रपतियों के सलाहकार रह चुके राइडल का कहना है कि ओबामा प्रशासन को बगैर लाग लपेट के नवाज शरीफ को यह संदेश देना होगा कि अगर पाकिस्तानी फौज अफगान तालिबान का साथ नहीं छोड़ेगी तो उन्हें मिलने वाली अमरीकी फौजी मदद बंद कर दी जाएगी। लेकिन आज जबकि सऊदी अरब से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिल रही है और चीन से भारी निवेश मिल रहा है तो कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि ये धमकी कुछ मायने रखती भी है। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान डेस्क की प्रमुख रह चुकी शमाइला चौधरी का कहना है कि पाकिस्तानी फौज के लिए बहुत मायने रखती है।
The military has never received this kind of budget support from any other government. They count it as a line item in the national budget, so it's quite significant for them.
Shamaila Chaudhary कह रही थी कि पाकिस्तानी फौज को कभी किसी और देश से इस तरह की मदद नहीं मिली है और ये उनकी बजट का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन साथ ही उनका कहना है कि इस पैसे के बावजूद पाकिस्तानी फौज अपनी नीति नहीं बदलने जा रही है। एक अंदाजा है कि इस साल अमरीका ने पाकिस्तान को $60 करोड़ से भी ज्यादा की फौजी मदद दी है और पिछले 14 सालों में सिर्फ फौजी मदद $20 अरब से ज्यादा की रही है। शमाइला चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ अपनी मुलाकात के दौरान इस फौजी मदद को जारी रखने की मांग तो करेंगे ही, साथ ही दूसरे आर्थिक पैकेज की भी मांग करेंगे। वाशिंगटन में कई लोगों का मानना है कि अमरीका को पाकिस्तान से किसी न किसी तरह का संबंध बनाए रखना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु ताकत तो है ही, उसके परमाणु हथियार बनाने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। अमरीका में इस बात को लेकर चिंता रहती है कि पाकिस्तानी परमाणु हथियार कहीं गलत हाथों में न पड़ जाएं, और अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि ओबामा इस मामले को नवाज शरीफ के साथ बातचीत के दौरान उठाएंगे। नवाज शरीफ की लिस्ट में व्यापार और निवेश के अलावा भारत के साथ बिगड़ते संबंधों का जिक्र करना भी है और माना जा रहा है कि उनकी कोशिश होगी कि ओबामा प्रशासन इसमें मध्यस्थता करे। देखा जाए तो उनका यह दौरा पिछले दौरे से बिल्कुल अलग है जब वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे और पाकिस्तान अमरीका रिश्तों को एक फौजी रिश्ते के दायरे से निकालकर एक नए मुकाम तक पहुंचाने की बात कर रहे थे। लेकिन आज दोनों ही तरफ शिकायतों के पुलिंदे नजर आ रहे हैं, नाउम्मीदी और निराशा नजर आ रही है। बृहस्पतिवार की मुलाकात के बाद ये मौसम बदलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्रजेश उपाध्याय, BBC वाशिंगटन।
और इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने पाकिस्तान में पेशावर स्थित वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफजई से बात की और पूछा कि नवाज शरीफ बराक ओबामा की बातचीत में अफगानिस्तान के साथ साथ और क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं।
देखें, पाकिस्तान में तो काफी इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का दबाव है पाकिस्तानी सरकार के ऊपर, खास तौर पे वजीर आजम नवाज शरीफ के ऊपर। अफगानिस्तान तो बड़ा अहम मौजू है, इसके ऊपर तो बात होगी, लेकिन इसके अलावा अमरीका का ये कहना है कि पाकिस्तान हकानी नेटवर्क के खिलाफ पाकिस्तान के कबायली इलाके में मजीद कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने तो शुमाली वजीरिस्तान में पिछले साल से फौजी कार्रवाई की है, लेकिन अमरीका उससे मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान की भी कुछ ख्वाहिशात हैं, लेकिन अमरीकी मुतालबात भी हैं और इसके ऊपर बात होगी। और अफगानिस्तान के हवाले से अमरीका चाहेगा कि पाकिस्तान वहाँ पर तालिबान और अफगान सरकार के दरमियान फिर से बातचीत करवाए।
अमेरिका की दिलचस्पी अफगानिस्तान में है। इस बीच में खबरें ये भी आती हैं افغانی طالبان جو ہے اسے کہیں نہ کہیں پاکستانی آپریٹیوز کا سپورٹ ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اوباما اور شریف کی جو ملاقات ہونے والی ہے اس کا افغانستان کو لے کر کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟
دیکھیں میرے خیال میں یہ جو ملاقات جب ہو جائے گی تو ممکن ہے کہ پاکستان پھر سے کوشش کرے اور امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ افغان طالبان کو اس بات کے اوپر راضی کرے یا مجبور کرے کہ وہ افغان سرکار سے بات چیت کریں. پہلے بھی پاکستان نے 7 جولائی کو مری میں افغان طالبان اور افغان سرکار کے مذاکرات کروائے تھے. تو ایک تو مزید یہ پھر سے کوشش کی جائے گی. اور دیکھیں افغان سرکار پریزیڈنٹ اشرف غنی وہ پاکستان سے کافی ناراض ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آئندہ کے لیے پاکستان سے نہیں کہیں گے کہ وہ ان کے طالبان سے مذاکرات کروائے, بلکہ اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ تو پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کی بجائے افغان طالبان جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے. تو ابھی امریکہ اگر واقعی چاہتا ہے کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے اور یہ مذاکرات کروائے اور افغان سرکار بھی مان جائے تو پھر میرے خیال میں یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. یہ لیکن یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے, کیا کوئی معاہدہ ہو جائے گا, کوئی جنگ بندی ہو جائے گی, یہ بڑے اہم سوالات ہیں. میرے خیال میں یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا.
جس طرح سے ابھی تبدیلیاں پاکستان میں دیکھنے کو ملی ہیں, پاکستان کے جو این ایس اے ہیں وہ بھی بدل گئے ہیں, فوج کا دخل بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف اگر کچھ کمٹ کرتے ہیں اوباما کو تو وہ اپنے کمٹمنٹ کے مطابق تبدیلیاں لا پائیں گے؟
میرے خیال میں نواز شریف کوئی بڑی کمٹمنٹ نہیں کریں گے. ان سے پہلے پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارہ آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر, وہ بھی امریکہ سے ہو کر آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی نواز شریف سے یہاں پر ملاقات کی, ان کو کچھ مشورے دیے ہوں گے. تو یہ آرمی کو لے کے سینا کو لے کر نواز شریف فیصلے کریں گے. خود وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ امریکہ کی ہر بات کو مان لیں. یہ جو ہمارے نئے این ایس اے بنے ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوا, تو میرے خیال میں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو واقعی آرمی کا سینا کا بڑا اثر ہے اور وہ چاہیں گے کہ ان کا آدمی اس اہم پوزیشن کے اوپر آ جائے. اس کے علاوہ سرتاج عزیز جو پہلے این ایس اے تھے وہ کافی مصروف ہیں, ان کی عمر بھی زیادہ ہے. وہ میرے خیال میں اس کے بعد جو فورن افیئرز ہیں یہ وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں فورن افیئرز کے بارے میں, تو ان سے ایک یہ عہدہ لے لیا جائے گا این ایس اے کا اور وہ ساری توجہ پھر فورن افیئرز کی طرف دیں گے. ممکن ہے ان کو مکمل فورن منسٹر بنا دیا جائے, فی الحال تو وہ ایڈوائزر ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان میں آرمی کا پہلے بھی کافی اثر تھا, ابھی مزید یہ بڑھ جائے گا.
پشاور سے یہ تھے ورشٹھ پترکار رحیم اللہ یوسف زئی.
دنیا کی بڑی خبریں بی بی سی کے ساتھ سوموار سے شکروار دیکھیے ٹی وی پر بی بی سی دنیا, ای ٹی وی نیٹورک کے ہندی اور اردو کے سبھی چینلوں پر.
نمسکار, سواگت ہے آپ سب کا, یہ ہے بی بی سی دنیا, میں ہوں سمرن پریت کور.
یہاں آ کر وہ لوگوں کو گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اب آزاد ہیں, اس سے بات کرنے میں بہت مزہ آتا ہے.
تو دیکھنا مت بھولیے بی بی سی دنیا شام 9:20 پر, ای ٹی وی کے ساتھ ساتھ بی بی سی ہندی .com اور بی بی سی ہندی کے یوٹیوب چینل پر بھی. بی بی سی دنیا.
تو دیکھنا نہ بھولیں بی بی سی دنیا شام 9:20 پر. اور اب بات ان کی جن پر رہے گی ہم سب کی آج نظر.
پاکستان کی ایک آتنکواد نرودھی عدالت میں ممبئی دھماکوں کے معاملے میں 7 آروپیوں پر سنوائی ہوگی. اس حملے کا کتھت ماسٹر مائنڈ ذکی الرحمان لخوی اور 6 انے پر اس حملے کی سازش کرنے اور انجام دینے کے لیے مقدمہ چل رہا ہے. 26 نومبر 2008 کو ممبئی میں ہوئے اس چرم پنتھی حملے میں 166 لوگ مارے گئے تھے. 3 چرنوں میں ہونے والے ہریانہ کے پنچایتی چناؤں میں پنچایتی سمیتی اور ضلع پریشد سدسیوں کے چناؤ کی مت گننا آج ہوگی. یہ پوری چناؤ پرکریا 31 اکتوبر تک سمپن ہوگی. وتیہ بازاروں میں کاروبار کو سرل بنانے کے مقصد سے وت منترالے دوارا آیوجت ودیشی پورٹ فولیو نویشکوں یعنی ایف پی آئی اور گھریلو سہبھاگیوں کی 2 دیوسیہ بیٹھک آج سے شروع ہونے والی ہے. اس میں ادھیکاری گھریلو بازار کے پرتبھاگیوں اور اسٹاک ایکسچینج کے پرتندھیوں سے ملاقات کریں گے. یوروپیہ آیوگ करों में चोरी के मामले में फिएट और स्टारबक्स कंपनियों पर आज महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा कर सकता है। बर्लिन में जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल, इसराइली और फिलिस्तीनियों के बीच हो रही हिंसा पर इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बात करेंगी। सोमाली शरणार्थियों के लिए योजना बनाने के मकसद से ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों की प्रमुख फेडरिक मोगेरिनी, सोमालिया के प्रधानमंत्री, कीनिया के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख अंतोनियो गुंतरेस से मुलाकात करेंगी।
और अब बात बिहार चुनावों की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दो चरणों में प्रचार के दौरान कुछ एक मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो भावनात्मक मुद्दे ही ज्यादा हावी रहे हैं, लेकिन तीसरे दौर के चुनाव के पहले प्रचार में मुद्दों की दिशा शायद बदल रही है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाले महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए महंगाई, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की ये रिपोर्ट।
त्योहारों के उत्सवी माहौल के बीच बिहार चुनाव में सभी दलों के प्रमुख नेताओं का प्रचार और जनसंपर्क जारी है। प्याज के बाद दाल की बढ़ी कीमतें अभी देश भर में चर्चा में हैं। दाल की बढ़ी कीमतों के लिए लालू और नीतीश पहले से ही नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे थे। कल बारी एनडीए नेताओं की थी। कल भाजपा दफ्तर में आयोजित अलग अलग संवाददाता सम्मेलनों में तीन तीन केंद्रीय मंत्रियों राधामोहन सिंह, रामविलास पासवान और धर्मेंद्र प्रधान ने दाल की बढ़ी कीमतों के लिए नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय सहायता के बावजूद ना तो बिहार सरकार ने कीमतों को काबू रखने की कोई कोशिश की और ना ही पिछले तीन वर्षों में दलहन का उत्पादन ही बढ़ाया।
अब नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि 6 महीना तक कहाँ थे। कल शाम में उन्होंने पत्र भेजा नेफेड को और वो भी नेफेड ने मांगा था आज से बहुत पहले कि कितना चाहिए, तो ये नहीं भेजा है, ये भेजा कि नेफेड आप हमारे यहाँ आप बिक्री केंद्र खोलिए, जबकि ये वितरण का काम राज्य सरकारों का है। तो अपने गलती को छिपाने में नीतीश कुमार जी माहिर है और मूल स्थिरीकरण का फंड का इस्तेमाल नहीं किया, 6 महीने तक पत्र को रिस्पॉन्स नहीं किया।
जो राज्य सरकार जितनी तत्पर है, अभी भी जो है आप दिल्ली की सरकार ने 3-4 दिन से जो है वो खुले खरीद करके सब में लिया है इम्पोर्टेड और बेचना शुरू कर दिया है।
इन आरोपों के जवाब में बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि महंगाई की आग से जल रहे लोगों पर केंद्रीय मंत्री नमक छिड़क रहे हैं।
बिहार की जनता को चुनाव के वक्त जब उनकी गर्मी से आज बिहार की जनता दाल के बढ़ती कीमतों से पिस रही है, वैसे समय में झूठी बातें बोलकर गलत ढंग से बिहार सरकार पर आरोप मढ़कर ये सिर्फ और सिर्फ जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं।
कल जहां एक ओर दाल के बहाने महंगाई की बात हुई तो दूसरी ओर पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी ने फेसबुक चैट पर सवालों के जवाब में कहा कि बिहार में गोमांस नहीं, विकास, शिक्षा और रोजगार बड़े मुद्दे हैं। तीसरे चरण के मतदान में अभी ठीक एक हफ्ते का वक्त बाकी है। इस बीच सिर्फ कल ही दशहरे के मौके पर प्रचार का शोर थमा रहेगा। ऐसे में यह तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा कि मुद्दों की जो बात शुरू हुई है, चुनाव प्रचार उसी पर आगे बढ़ता है या फिर एक बार भावनात्मक मुद्दे और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ही हावी होते हैं। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
और आपको ये भी बता दें कि तीसरे चरण में जो मतदान होगा वो 28 अक्टूबर को होगा। उसमें 50 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद के दोनों बेटे भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। और बिहार चुनाव से जुड़ी एक और खबर, बिहार विधानसभा चुनाव पर बीबीसी की विशेष सीरीज बुझे न बिहार को में आज जानने की कोशिश होगी कि बिहार में महिलाएं किस तरह से वोट डालती हैं।
बूझिए ना बिहार को CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार से आज का सवाल,
बिहार में महिलाएं किस तरह से वोट करती हैं। एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई पड़ा है बिहार की महिला मतदाताओं के बीच में। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में महिला मतदाताओं का जो टर्नआउट, जो वोटिंग प्रतिशत था, वो पुरुष मतदाताओं की तुलना में काफी कम रहता था। ये गैप लगभग 15-16% होता था। कहने का मतलब, अगर 100 महिलाओं में से 50 महिलाओं ने वोट दिया तो वहीं 100 पुरुषों में से लगभग 65-66 पुरुष वोट डालते थे, तो बहुत बड़ा फासला होता था। लेकिन आज पिछले 4-5 सालों में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा, और यह परिवर्तन यह है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट डाल रही हैं बिहार में।
किसी की सलाह पर वोट डाल रही हैं, अपने पति या अपने बेटे की सलाह पर?
सबसे पहले इन आंकड़ों को पेश करना चाहूंगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट लगभग 2014 के चुनाव और 2010 के विधानसभा चुनाव में 3-4% ज्यादा रहा। बिहार एक तरह से पहला राज्य हुआ 2010 में जहां महिलाओं ने पुरुषों को वोट डालने के मामले में पीछे छोड़ दिया। अब अहम बात यह है, क्या ये महिलाएं अपनी मर्जी से वोट डालने आ रही हैं या कि पुरुषों के सलाह पे वोट डालते हैं। आंकड़ों के दृष्टिकोण से ये बहुत स्पष्ट है कि पिछले 10 सालों में इस बात में भी बहुत परिवर्तन आया। बड़ी संख्या में महिला मतदाता अपनी मर्जी से वोट डालती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि महिला मतदाता वोट डालने में किसी का सलाह नहीं लेती, लेकिन जितनी महिलाएं पहले पुरुषों का सलाह लेती थी, चाहे वो पति का हो, बेटे का सलाह हो या अपने पिता से सलाह ले रही हों, उनकी तादाद में कमी आई है। और आज ऐसी महिलाओं की संख्या कम हुई है जो दूसरों की सलाह पे वोट डालती हैं। अपनी मर्जी से अपना वोट देने का डिसीजन बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं ले रही हैं।
बूझिए ना बिहार को।
हालांकि दोनों ही पार्टियां, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की महागठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए, दोनों ये दावा कर रही हैं कि बिहार में महिलाएं अगर ज़्यादा वोट डाल रही हैं तो इससे उनको फ़ायदा होगा। बहरहाल इसकी असल जानकारी तो 8 नवंबर को होगी जब वोटों की गिनती शुरू होगी। बहरहाल अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, और हमारे सहयोगी प्रगति सक्सेना तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी प्रगति, बताएं।
जी इकबाल साहब, आज सभी अखबारों के पहले पन्ने पर एक बेहद शर्मनाक घटना का जिक्र है। फरीदाबाद जिले के एक गाँव में मकान में पेट्रोल डालकर दलितों को जलाया। दलितों का एक परिवार था जिसमें 2 मासूम बच्चे भी जल गए। इस मामले में 11 सवर्णों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और 3 गिरफ्तार हो गए हैं। उबर रेप केस में ड्राइवर जो है, टैक्सी चालक जो है, उसको रेप का दोषी करार दिया गया है। नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग ने इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ आईपीएल को भी विदा कह दिया है। विरोध करो बवाल नहीं, ये संदेश है अरुण जेटली का शिवसेना के लिए। उन्होंने सख्त संदेश दिया है कि विरोध करने का सभ्य तरीका अपनाएं। यौन उत्पीड़न मामले में क्रिकेटर अमित मिश्र तलब किए गए हैं। बंगलुरु पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। इसके अलावा नवभारत टाइम्स में खबर है कि दाल 210 रुपए के पार चली गई है और इससे सियासी उबाल जो है जोरों पर है। जनसत्ता में है तानाशाही और तौहीन के खिलाफ लेखकों की प्रतिशोध सभा दिल्ली में हुई, लेकिन दिल्ली में नहीं दिखे दमदार चेहरे। लेकिन इस दौरान जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं कृष्णा सोबती, उन्होंने साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की है। अस्पताल के वार्ड में स्टाफ ने किया गरबा, ये भी जनसत्ता में खबर है। एक डायलिसिस वार्ड में, गुजरात की घटना है, डायलिसिस वार्ड में स्टाफ ने असंवेदनशील व्यवहार करते हुए गरबा शुरू कर दिया। धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का एक और मामला पंजाब के भटिंडा में आया है, ये भी खबर जनसत्ता में है। हिंदुस्तान में खबर है कि अमेरिका पाक में एटमी करार नहीं होगा, ये व्हाइट हाउस ने साफ स्पष्ट कह दिया है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं।
इस दौरान जिसका जिक्र हम लोगों ने शुरुआत में किया था।
नई दुनिया में खबर है कि मध्य प्रदेश में 22,000 करोड़ की फसल सूखे की वजह से चौपट हो गई है और 58,00,000 टन घटेगा उत्पादन। तो इसका असर जो है हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने ही वाला है और महंगाई पर भी पड़ेगा। दिल्ली पहुंचा गीता का परिवार, ये भी नई दुनिया में खबर है। गीता जो मूक बधिर पाकिस्तान में अपने परिवार की तलाश भारत में कर रही हैं, उनका परिवार गीता को लेने के लिए दिल्ली आ गया है। जी, बिहार से दिल्ली आ गया है। प्रियंका खुराना बनी मिसेज अर्थ, ये भारत की प्रियंका खुराना है, जो किंगस्टन में ये प्रतियोगिता हुई थी उसमें ये मिसेज अर्थ का खिताब उन्होंने जीत लिया है। दैनिक भास्कर में खबर है कि कैबिनेट की बैठक आज होगी, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस और वेतन की सीमा को बढ़ाने पे मंजूरी मिल सकती है। तो ये भी एक खुशखबरी होगी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। एक दिलचस्प खबर ये है कि एक मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत पहेली जैसा मामला सामने आया है गुजरात में, कि एक शख्स हैं अर्पित, जिनका सीने की जगह पेट में धड़कता है दिल।
जी बहुत शुक्रिया प्रगति आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त।
Huge six, 300. And can you believe it? He got a 100 with a six.
ये लम्हे हैं साल 2004 के जगह पाकिस्तान, जहां पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत के सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने छक्का लगाकर अपना 13वां शतक पूरा किया और इसी पारी की मदद से भारत ने पाकिस्तान को एक पारी और 52 रन से हराया। ये वही टेस्ट मैच था जिसके बाद उन दिनों दिल्ली के नजफगढ़ में रहने वाले वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाने लगा। उन्हीं मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग ने आधिकारिक रूप से कल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया।
Pretty happy with my career and if I made any mistake, if I hurt anybody, so sorry for that. So I'm really, really happy that I'm retiring from international cricket.
वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट के हर प्रारूप में अपनी छाप छोड़ी। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 104 मैच खेले और 2 13 शतक सहित 23 शतक और 32 अर्धशतक जमाए। उनके बल्ले से 8,586 रन निकले, 319 रन उनका सर्वाधिक स्कोर रहा। वीरेंद्र सहवाग ने अपना जलवा एक दिवसीय क्रिकेट में भी खूब दिखाया। उन्होंने 251 एक दिवसीय मैचों में 15 शतक और 38 अर्धशतक की मदद से 8,273 रन बनाए। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2011-12 की सीरीज में खेले गए चौथे एक दिवसीय मैच में इंदौर में दोहरा शतक बनाते हुए 219 रन बनाए। सहवाग याद करते हैं अपने कुछ खास मैच।
जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते वो भी एक लम्बा था, जब मैंने पहला 13 शतक बनाया वो एक लम्बा था मेरी लाइफ का, कि आज तक किसी हिंदुस्तानी प्लेयर ने 13 शतक नहीं बनाया तो मैंने बनाया। श्रीलंका अगेंस्ट 201 नॉट आउट रन बनाए और वो हम लोग टेस्ट मैच जीते। गावस्कर के बाद मैं दूसरा खिलाड़ी बना जिसने बैट थ्रू किया, जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मुझे याद रहेंगे।
सहवाग साल 2007 में पहला 2020 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी रहे। सहवाग भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में न खेले लेकिन अभी भी वो हरियाणा रणजी टीम के कप्तान हैं और आईपीएल में भी पंजाब टीम का हिस्सा। उधर फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कल क्वालिफाइंग मुकाबले खेले गए, जहां भारत के बीसाई प्रणीत चीन ताइपे के वांग जू वेई से 21-15 से हार गए। आज मुख्य दौर के मुकाबले शुरू होंगे, जहां पहले दौर में शीर्ष वरीयता हासिल भारत की साइना नेहवाल महिला एकल वर्ग में, कनाडा की मिशेल ली और पीवी सिंधु चौथी वरीयता हासिल चीन की सिजियान वांग का सामना करेंगी। पुरुष एकल वर्ग में 8वीं वरीयता हासिल भारत के पी कश्यप फ्रांस के थॉमस राउस्केल और 5वीं वरीयता हासिल के श्रीकांत चीन के तियान हाउवेई से भिड़ेंगे। महिला युगल वर्ग में ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोनप्पा भी अपना दमखम दिखाएंगी। इनके अलावा अजय जयराम और एचएस प्रणय भी पुरुष एकल वर्ग में उतरेंगे।
और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी 4 दिन की यात्रा पर अमरीका पहुंच गए हैं। वे कल अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा से मिलेंगे। रूस और अमरीका के अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों ने एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे सीरिया के हवाई क्षेत्र में उनकी वायुसेना में भिड़ंत को टाला जा सकता है। ब्रिटेन में अपने दौरे के पहले दिन के आखिर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बकिंगम पैलेस में शाही भोज में शामिल हुए। अपने भाषण में क्वीन एलिजाबेथ ने राष्ट्रपति जिनपिंग की इस यात्रा को दोनों देशों के रिश्ते और वैश्विक साझेदारी में एक अहम मोड़ माना। कनाडा के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की है कि उनकी लिबरल पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद अब कनाडा वैश्विक मंच पर लौट आया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक पूर्व अध्यक्ष जॉन एश को अमेरिका की ग्रांड जूरी ने रिश्वत लेने का दोषी पाया है। जॉन नैश एंटवा और बारबुडा में संयुक्त राष्ट्र के राजदूत थे। मकाऊ के एक अरबपति व्यवसायी और 3 अन्यों को भी रिश्वत लेने का दोषी पाया गया। इसी महीने जॉन एश पर एक चीनी कारोबारी से कथित तौर पर $13 लाख लेने का इल्ज़ाम लगाया गया था। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली शाकिर आलम ने। آپ سے اگلی ملاقات ہوگی ابھی سے ٹھیک ایک گھنٹے بعد یعنی 8 بجے کارکرم وشو بھارتی میں. لیکن پل پل بدلتی خبروں کے لیے آپ 24 گھنٹے آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbchindi.com پر. اور اب اقبال احمد کو دیجیے اجازت. نمسکار.